ओम शांति। 9 मार्च 1994। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन बनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों ने योग, चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने, कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबको यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने सबका दिल का, ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ। नाइन्थ मार्च 1994। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन बनाया। 94 की मुरली है, ब्रह्मा बाबा का एल्बम बनाया गया था जिसमें स्टैंप था, जो दादियों ने बाबा को दिखाया था, तो स्टैंप का फंक्शन बनाया। सभी ने देखा है वो स्टैंप, पोस्टर स्टैंप 94 का। स्टैंप फिलेटली कहते हैं उसे इंग्लिश में, स्टैंप कलेक्शंस। तो स्टैंप का फंक्शन बनाया, विशेष योग भी लगाया ना, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों ने योग के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने, क्या कर दिया? कमाल की ना, क्योंकि चारों ओर सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को क्या? सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का क्या है? अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है या जाना है? जो कहते हमने देखा है वह हाथ उठाओ। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा है, जो कहते हमने नहीं देखा, उनके लिए बाबा ने एक बात कही है, किससे देखना है? सबसे बड़ी आंख कौन सी है जो सबके पास है? बाबा ने इस मुरली में आगे कहा है, शिवरात्रि के बाद की ये मुरली है, कि अनुभव की आंख सबसे बड़ी आंख है। दुनिया वालों को स्टैंप से ब्रह्मा बाप का अनुभव कराना चाहते हो और खुद नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं है ना। चित्र के सामने जाते हो तो चैतन्य का अनुभव होता है, परंतु खुद अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? तो अच्छा नहीं है ना, ऐसा बाबा ने इस मुरली में आगे कहा। तो बड़े से बड़ी आंख कौन सी है? अनुभव की आंख। बाप तुम्हारी सुनता भी है अगर चित्र के सामने बैठ जाओ तो बाप तुम्हारा बाप है ना, तो बाप तुम्हारी सुनता भी है। कल कहा था मुरली में, बाप क्या करता है माँ जाने के बाद, लौकिक में हाँ, कल की साकार मुरली प्यार करता है और क्या करता है, चाकरी करता है। तो सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे? देखा है व जाना है, जो कहते हमने देखा वह हाथ उठाओ। तो देखने की विधि क्या है? अनुभव की आंख, अनुभव कर लेना अर्थात देख लेना। तो यहाँ बाबा आगे दादियों से भी मुलाकात है, जिसमें दादियों ने वो स्टैम्प का एल्बम बाबा के सामने रखा और बाबा ने उसमें कुछ और महावाक्य कहे। तो यहाँ कह रहे हैं विशेष योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों ने योग लगाया, चाहे डबल विदेशियों के योग से, चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के योग ने क्या कर दिया? कमाल कर दिया। सबका एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भागदौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा, कोई ने वाचा, जिन्होंने जो भी योगयुक्त होकर सेवा की तो क्या हो गया, उससे सफलता मिल गई। कितनी खुशी हुई। तो सबका ब्रह्मा बाप से अति सूक्ष्म प्यार है। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टैम्प का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। क्या किया तो विघ्न विनाशक हो गए? पावरफुल योग, शक्तिशाली योग, शक्तिशाली योग क्या है? शक्तिशाली योग, पावरफुल योग किसे कहेंगे? शक्तिशाली योग लगाने के लिए किन बातों की आवश्यकता है? शक्तिशाली योग लगाने से क्या होता है, क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है, क्या अनुभव है? ऐसे ये तीन प्रश्न है। सबसे पहला है व्हाट इज पावरफुल योगा, शक्तिशाली योग क्या है, क्या कहेंगे? जहां मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो जाए, सब कुछ एकाग्र हो जाए और योग की क्या परिभाषा हम संसार वालों को बताते हैं? जोड़, योग, यूनियन, मिलन, कनेक्शन, संबंध। तो ये योग की परिभाषा हम संसार की आत्माओं को बताते हैं। योग अर्थात मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसका आधार क्या है? संडे की मुरली, संडे की मुरली, संडे की मुरली। बाप और बच्चे के मिलन का आधार क्या है? पवित्र बुद्धि। पांचवी पॉइंट, मिलन आधार क्या है? पवित्र बुद्धि। बुद्धि पवित्रता आधार भी है और पवित्रता परिणाम भी है, शक्तिशाली योग। तो शक्तिशाली योग किसे कहेंगे? एक तो मन बुद्धि एक की याद में टिक गई है, दो तीन बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो देह का भान खो चुका है, देह का भान भूल चुका है, देह भान की भी विस्मृति। कल की मुरली में था हनुमान की परिभाषा, हनुमान क्या है? सेवाधारी है। क्या कर दिया उसने? लंका को जला दिया, माया के अधिकार को समाप्त कर दिया, तब सेवाधारी कहेंगे। तो याद अर्थात जिसमें देह भान, देह का भान भी भूला हो, देह के भान की संपूर्ण विस्मृति की जो अवस्था है, जो जो चीजें देह के भान में लाती है वो सभी योग में बाधा है। शक्तिशाली योग अर्थात फर्स्ट चीज है जिसमें देह और देह का भान, देह के तरफ आकर्षित करने वाली सारी चीजें भूली हुई है, विस्मृति। देह के तल से आत्मा ऊपर उठी है, देह का जो प्लेटफॉर्म है उससे ऊपर, देह की जो कॉन्शियस लेवल है उससे ऊपर, देह और फिर देह से संबंधित सारी चीजें, देह के संबंध, देह की प्राप्ति, देह के आकर्षण, देह की वस्तु, देह के धर्म, ये सारी ही चीजें एक तरफ, इन सब की विस्मृति, देह भान भूलना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, यह है पहली परिभाषा। दूसरी स्टेप है अपने को आत्मा निश्चय कर। आत्मा को ही नहीं जाना तो मंजू बहन आज के मुरली में एक जगह है तो क्या, परमात्मा को भी नहीं जाना। मनुष्य तो ना तो आत्मा को जानते हैं, आत्मा को ही नहीं जानेंगे तो परमात्मा को रियलाइज भी नहीं कर सकेंगे। आत्मा को जाना माना परमात्मा को जाना, क्रांतिकारी वाक्य है। खुद को जान तो खुदा को जान, तो आत्मा को जानना माना ही परमात्मा को। तो आत्मा जानना, आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, और फिर उसके बाद थर्ड स्नेहमयी याद, संबंध के आधार पर, स्नेहमयी याद संबंध के आधार पर। ये तीनों ही चीजें जहां हो जाए, देह विस्मृत हो गया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गई और आत्मा परमात्मा की याद में खो गई, सुध बुध भूल गया, तल्लीन विलीन लवलीन, एक बाप दूसरा ना कोई, यह है नेचुरल पवित्रता। यह है नेचुरल पवित्रता। बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, बाप बच्चों का हट देख नहीं सकते, मुझे बोला है। तो शक्तिशाली योग लक्ष्य हो। हम संसार की आत्माओं को चार स्तंभ बताते हैं राजयोग के, कौन से चित्र सभी ने देखा है। सबसे पहला है स्तंभ कौन सा है, अब जो संसार वालों को बताते चलो आज हम स्वयं को बताएंगे। दुनिया को बताने में, कल कहा था ना, भाषण देने में स्थिति की आवश्यकता नहीं है, कोर्स कराने में स्थिति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में जाके भाषण करके आ जाओ, कोर्स करा के आ जाओ। तो राजयोग के चार स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म में स्थित होना अर्थात ब्रह्मलोक में स्थित होना, अपने घर में स्वदेश स्वरूप स्वधर्म में स्थित होना, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ब्रह्मचर्य की वास्तविक परिभाषा है। या फिर उससे भी आगे जाओ ब्रह्माचर्य, जो ब्रह्मा का आचरण था उसका अनुकरण अनुगमन अनुसरण करना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाली जो भी चीजें है, जो भी देखना सुनना प्रशंसा करना प्रभावित होना स्पर्श करना समीप जाना, जो भी ब्रह्मचर्य की आठ गांठें बताई जाती है वो सभी, तो ब्रह्मचर्य अर्थात ज्यादा से ज्यादा समय परम धाम में रहना। हम जो योग करते हैं उसमें कितना समय परम धाम में रहते हैं, बहुत कम। ज्यादा से ज्यादा समय ऊपर टिक जाना, उसी ब्रह्म घर में, उसी ब्रह्म लोक में, उसी मणियों के आगार में, स्थित हो जाना लंबा समय तक, अर्थात ब्रह्मचर्य में स्थित होना। तो राजयोग का प्रथम आधार ब्रह्मचर्य है, अर्थात अपने घर की याद में रहना, अपने घर को याद करना, अपने घर को मिस करना। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो घर की याद आती है, ठीक है ना अशोक भाई? कल की मुरली की सेकंड पेज याद है ना बाबा ने क्या कहा था, दिल पे कौन चढ़ते हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा अर्थात ब्रह्मलोक में स्थित हो जाना, ब्रह्म घर का आकर्षण होना, ब्रह्म घर की याद आना, उस शांति धाम का बार बार अनुभव करना, वह लोक कि जहां पर कोई देह नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल एक आत्मिक स्वरूप में आत्मा स्थित है, उसी अनुभव में रहना और लंबे समय तक रहना और बार बार रहना और बार बार खींच और कशिश हो उसकी, वह ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्मलोक में स्थित होना, वह ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मा का आचरण, ब्रह्मा ने जो आचरण किया वैसा आचरण करना, ब्रह्मा का जो श्रेष्ठ आचरण था। किसी ने कोई सुझाव दिया है आशीष सुशील भाई? अच्छा दिया है सुझाव, तो उसके ऊपर सोचेंगे। 18 जनवरी के 18 दिन क्या करना है उसमें तो आए गई, परंतु यहाँ क्या करना है हमें? अच्छा ऐसा दिया है, अच्छा चलो इस पर सोचेंगे बैठ के क्लास के बाद। तो ब्रह्मा के आचरण पर चलना, ऐसा कहीं पर भी ब्रह्मा बाबा के जीवन में रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने किसी की निंदा की। कहीं पर भी किसी व्यक्ति की, विरोधियों की, आलोचकों की निंदा की कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं। कितनी बड़ी साधना है ये, हमारे मुख से जाने अनजाने में सहज किसी ना किसी की निंदा हो जाती है। निंदा करना ये रोमिंग जैसा है, रोमिंग होता है ना फोन का, जब हम रोमिंग पर होते हैं, फोन करो तो पैसे कटेंगे और रिसीव करो तो भी कटेंगे। फोन करो, किसी की निंदा करो तो पाप होगा, ये पुण्य कटेंगे। अगर किसी की निंदा सुनो तो भी कटेंगे। सुनना अर्थात बुद्धि में धारण करना, सुनना अर्थात चित्त में ग्रहण करना, उसको स्वीकार करना, मान लेना और खुश होना कि ये सत्य है, ऐसा ही है। वो ट्रिपल टेस्ट बताया था ना संडे, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट लगानी है, जो सुन रहा हूं पहले तो वो सत्य है या नहीं है, दूसरा चलो सत्य भी है, दूसरा है अच्छाई है या बुराई है, अच्छा चलो अच्छाई है, थर्ड टेस्ट है फिर भी मेरा कुछ फायदा? मेरा कोई फायदा वो सुनने से? कुछ भी नहीं, तो इससे अच्छा तो सुनाओ ही मत। अच्छा कोई फिर भी सुनाता है तो सुनते तो हम बहुत सारी चीजें हैं ना, मोबाइल में कितने मैसेजेस आते हैं कंपनी की तरफ से, चिंतन करते हो क्या उसका? योग में ये ऑफर आई है, बैठ के चिंतन करते है कोई? वो आया और गया। वैसे ये सारे जो है संसार में किसी की निंदा, ये भी ऐसा ही। तो पहला आधार है ब्रह्मचर्य, दूसरा आधार है शुद्ध अन्न, ब्राह्मणों के बुद्धि का भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प। हम उस भोजन की बात अब नहीं करेंगे, हम उस भोजन की बात करेंगे जो आंखों से स्वीकार किया जाता है, कानों से स्वीकार किया जाता है। यह भोजन क्या हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं, यह भोजन शुद्ध अन्न। अगर यह अशुद्ध है अगर इसमें विकार के अंश है, अगर इसमें अश्लीलता है, वो तो बहुत दूर की बात है, तो योग नहीं हो सकता कहीं भी कहां पर भी। डस, कल की मुरली में एक शब्द था डसना, क्या कहां था, कहां था? अगर आत्माभिमानी नहीं है तो क्या हो जाता है, काम विकार डस लेता है। इफ यू आर नॉट सोल कॉन्शियस यू गेट बिटन बाय द वाइस ऑफ लस्ट। तो शुद्ध अन्न, जो भी हम देखेंगे वो शुद्ध हो, जो भी हम सुनेंगे वो शुद्ध हो, जो भी हम बोलेंगे वो शुद्ध हो। पापा जी वासना नको दाऊ दौड़ा त्याहून आंधळास भरामी, अपवित्र वचन नको माझ्या मुखे त्याहून मुखाच भरामी। तीसरा आधार, तीसरा आधार क्या है? दैवी गुण, दिव्य गुणों की धारणा, डिवाइन वर्च्यूज। कितने धारण किए हैं? 7 दिन का कोर्स यहाँ एक बार चालू करना होगा, पहले था, पहले से लेके तो 7 दिन का, पर वो 7 दिन नहीं चलेगा, उसकी 70 सीरीज हो सकती है। क्रोध को जीता है, चोरी तो चली गई, हेरा फेरी गई नहीं है, लोभ तो चला गया, पर अभी भी कोई चीज नहीं देखते हैं किसी के पास, तो पहला प्रश्न होता है ये कहां से लाई, पेन अच्छा है कहां से मिला, किसने दिया, कितने का है, कोई भी चीज देखी कि बस इंक्वायरी चालू हो जाती है। हाँ, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, चश्मा बड़ा अच्छा है कहां से लिया, दो लेके आना था, चोरी तो चली गई परंतु हेरा फेरी चालू है अभी। चौथा, तीसरा है दिव्य गुण, चौथा है सत्संग। सत्संग अर्थात मुरली क्लास में बैठ गया, हो गया सत्संग, संगठन में आ गए, मधुबन में आ गए, हो गया संगठन। सत्संग, सत्संग, सत का संग, जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसका संग, एक का संग। सारे संग छूट गए, चिरा चिरा जुड़ला माझा मीच माझा संग धालो, एक का संग, एक की याद, बस एक मन में किसका संग चल रहा है, मन के अंदर किस किस के साथ है हम, बाहर तो अकेले घूम रहे परंतु अंदर किसी के गले में हाथ है, किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, किसी के कंधों पर हाथ रख रख के चल रहे हैं। अंदर, अंदर का जो जगत है मन का, यहां पर कोई और साथी है, किस किस को पकड़ा हुआ है, अशोक भाई किस किस को पकड़ा है मन के अंदर, क्या? नहीं नहीं, आपके मन में किसको पकड़ा है? हाँ ठीक, कभी कभी किसी के कंधे पर हाथ तो नहीं रख देते हो? क्या? अच्छा किसको पकड़ के रखा है, किसी का हाथ पकड़ा है, किसी का साथ चाहिए, कोई पीछे खड़ा है मन में, कोई पीछे से चलता है तो अच्छा लगता है, कोई ना कोई है आसपास घूम रहा है अंदर ही अंदर। सत्य संग अर्थात एक का संग, एक की याद, एक के प्यार में मगन, उस एक में विश्वास, एक में निश्चय, एक का सहारा, एक की पनाह, एक का बल, एक का भरोसा, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति सर्व मन के भाव, एक के प्रति निष्ठा, एक के प्रति विश्वास, फेथ एक में, बिलीफ एक में। यह जो स्थिति है मन की, सबसे शक्तिशाली स्थिति है। उसे के अतिरिक्त और कोई संबल नहीं, एक ही सपोर्ट। ऐसी स्थिति का नाम है सत संग। राजयोग के चार आधार है। राजयोग की यात्रा का एक चित्र है निखिलेश भाई। सबसे पहला उसमें एक बाधा है, एक दीवार है, वो भी नोकीली दीवार है। एक दीवार है जो नोकीली है। नोक में अगर चुप जाए नोक तो लहूलुहान होकर व्यक्ति नीचे गिरता, गिरता हुआ भी दिखाया है उस चित्र में। तो सबसे पहली बाधा है, अगर योग शक्तिशाली चाहिए तो ये चार स्तंभ है। योग शक्तिशाली चाहिए तो पांच चीजों को क्रॉस करना होगा। सबसे पहली ये दीवार, नोकीली दीवार है बहुत। डॉक्टर के आने से पहले ही चकनाचूर, रसातल, हड़गुड़ टूट जाती है, काला मुंह, पांचवी मंजिल से नीचे, रसातल। तो पहली बाधा है दीवार जो कि नोकीली है। छोटे बच्चों की वो कहानी पता है ना, दो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उधर से एक परी आती है और परी दोनों को पकड़ के लेके जाती है। हाँ, वो कुएं के पास खेलते रहते हैं तो परी नीचे से आती है और दोनों को नीचे खींच लेती है, और वो परी उनको बहुत काम कराती है, बहुत काम कराती है। वो बहन भाई छोटे से होते हैं, इतना काम कराती है उनको, इतना काम कराती, बेचारे थक जाते हैं और फिर एक दिन सोचते यहां से भाग जाए। तो वो छोटा बच्चा और छोटी बच्ची एक दिन वहां से भाग निकलते हैं, तो परी उनके पीछे भागती है, वो छोटे बच्चे आगे, वो परी उनके पीछे। तो वो तब तक नीचे रहते थे, छोटे बच्चे भी थोड़ी सी जादू सीख जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे एक झाड़ू होता है जिससे वो झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू लेके भागते, झाड़ू फेंक देते, तो वो झाड़ू माउंटेन बन जाता है, ब्रूम माउंटेन। तो परी फिर भी उस माउंटेन पे चढ़ के क्रॉस करके उनके पीछे फिर भागती है। फिर वो दोनों बच्चे भागते 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 फिर पीछे देखते परी आ रही है, तो फिर वो उनकी कंघी होती है उसको फेंक देते, तो वो कोम माउंटेन बन जाता है, वो भी एक पहाड़ बन जाता है कोम के जैसा। तो परी फिर भी उसको क्रॉस कर जाती है, फिर छोटे दोनों बच्चे भागते हैं भागते हैं भागते हैं। तो कहते अब क्या करें, तो उनके पास एक ग्लास होता है, कांच, वो कांच को फेंक देते, वो कांच फिर से ग्लास माउंटेन बन जाता है। फिर अब वो परी जो होती है चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है गिरती है, फिसलती है गिरती है, फिसलती है गिरती है, और ये तब तक भाग जाती है। तो माया भी हमारे पीछे है, वो कहानी में परी दिखाया है। तो माया भी हमारे पीछे भागती है, तो हमको क्या कर देना है, ऐसा ग्लास फेंक देना है ताकि वो पिसलती रहे पिसलती रहे पिसलती रहे पिसलती रहे। तो पहला है दीवार, नोकीली दीवार। दूसरा है अग्निचक्र। अग्निचक्र क्रोध का आज की मुरली में कहा है बाबा ने, क्रोध के बारे में काटा तो अच्छा चतो संगम युगी गमला जो है पॉट, संगम युगी पॉट पर तुम अभी हो। माली क्या करता है, फूलों को निकाल लेता है काटों से, वैसे तुम भी इस समय अलग हो, तुम संगम पर हो, तुम संगम युगी पॉट पर हो, तुम गमले में हो। तो दूसरा है अग्नि चक्र क्रोध। अग्नि है, चोर तो चला गया पर हेरा फेरी चालू है अभी भी, आग दिखाना, रोब जमाना, आंखें बहुत कुछ कह देती है। तीसरा है खजाना, दिखाया ना खजाना, लोभ लालच तिजोरी भरी पड़ी है, क्या लू ये लू वो लू, थोड़ा सा ले लू रख लू संग्रह। चौथा है मोह, मोहजाल में फंसी है आत्मा। पांचवा है पहाड़ है एक, सारे विकारों को जीत लिया, काम को क्रोध को लोभ को मोह को मैंने जीता। क्या कर दिया मैंने, जीत लिया, मेरे जैसा कोई नहीं। एक है निरंकारिता एक है विनम्रता, दोनों में क्या अंतर है? मैंने तो है परंतु कुछ भेद है, एक जैसा नहीं है दोनों, एक है विनम्रता एक है निरंकारिता। निरंकारिता निराकारिता नहीं, निरंकारिता। मैं कितना नम्र हूं, मेरे जैसा नम्र कोई है क्या? अगर कोई आके बता दे तुमसे वो नम्र है, अच्छा मेरे से और कोई दूसरा ज्यादा भी नम्र, उसकी ये मजाल। विनम्रता जो है उसमें मैं अभी भी है, मैं विनम्र हूं, मैं का भाव अभी भी है। एक है भक्त कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं, तू ही सब कुछ है, मैंने जो जो अच्छा किया वो मैंने नहीं किया तूने किया, और जो जो बुरा किया वो मैंने किया। यह है विनम्रता। जो भक्त होते बहुत विनम्र होते, दासानुदास, मतलब जो जो जीवन में मेरे से अच्छे काम हुए बाबा मैंने नहीं किया तुमने किए, परंतु जो बुरा हुआ वो मैंने किया। इसमें मैं अभी भी है, वो मैं है। ये भक्त कह रहा है ऐसा अगर हम कहें तो, ये विनम्रता है। उसके भी आगे की एक स्टेज है, सब कुछ तू ही, फिर मेरा कुछ भी नहीं है। पर इसका गलत अर्थ मत पकड़ना, हाँ उसके चांसेस ज्यादा है। ये योगी की बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें वो कुछ भी कर नहीं रहा है, वो जो मैं है वो ही खो गया है, आय जो है वो खत्म हो चुका है। निरंकारिता सर्वोच्च अवस्था है आत्मा की, योग की सर्वोच्च अवस्था, स्थिति की सर्वोच्च अवस्था निरंकारिता। जैसे निर्विकारिता बहुत ऊंची अवस्था है, वैसे ही निरंकारिता। जैसे निर्विकारिता में अहंकार तो आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकारों को जीतना अर्थात निरंकारिता। फिर भी नए शब्द का प्रयोग किया गया है, निरहंकारी, निरंकारी निराकारी निर्विकारी। जबकि निर्विकारी में अहंकार तो आ गया, फिर भी दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, तीन शब्द है ब्रह्मावाप के लास्ट के, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो निरंकारिता वह अवस्था है जिसमें वो भान जैसे कठपुतली है वही सब कुछ कर रहा है, उसमें वो पश्चाताप भी खो गया है, वही है तू ही मैं हूं ही नहीं, दो खत्म हो चुके एक ही रह गया है, माई फादर एंड आई आर वन। बाइबल में है तीन स्टेजेस, पहली स्टेज में जीसस क्राइस्ट करता है माई फादर आई एम सन ऑफ गॉड, दूसरी स्टेज में कहता है एक जगह आई एम हिज सन ही इज माई फादर ही इज इन मी एंड आई एम इन हिम, मैं उसमें और वो मुझ में। परंतु एक जगह तीसरी जगह कहता है वेर इज योर फादर, वो कहता है माई फादर एंड आई आर वन। पहली स्टेज द्वैतवाद, आत्मा परमात्मा अलग, भक्त का जो अवस्था या फिलोसॉफी जिसको डुअलिज्म कहा जाता है। सेकंड स्टेज जो है वो मुझ में और मैं उसमें, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तीसरी अवस्था है वो और मैं एक हूं, वो और मैं अभी एक हो गया हूं, एक अलग है ही नहीं, मैं फादर एंड आई आर वन। काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयमेव पांडुरंग। ओम शांति।